अर्जुन, तुम वर्णाश्रम धर्म का पालन करो। वर्णाश्रम धर्म का पालन करते करते अपने जो कर्म हैं उनके फलों को मुझे अर्पित करो। इस तरीके से जब तुम फलों को मुझे अर्पित करोगे तो क्या होगा, धीरे धीरे तुम्हारा जो चित्त है वो शुद्ध हो जाएगा। और चित्त शुद्ध हो जाने के बाद इस संसार में तुम शांति से रह पाओगे और मृत्यु के बाद भगवत धाम को प्राप्त करोगे। ये निष्काम कर्मयोग यही है। तो ये आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि निष्काम कर्म योग क्या है, मैंने जो अभी बताया आपको। तो इस प्रकार से छठे चैप्टर में भगवान ने अर्जुन को बताया। तो ये उन लोगों के लिए है निष्काम कर्म योग जो लोग कुछ काम करना चाहते हैं और साथ साथ में उनका मन जो है अभी प्योर नहीं हुआ है, शुद्ध नहीं हुआ है, उनके लिए भगवान ने निष्काम कर्म योग बताया। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जिसका हृदय यानी कि इसका जिसका मन जो है वो प्योर हो गया है, हाँ, तो वो नौकरी नहीं करेगा, वो बिजनेस नहीं करेगा, वो जो संसारिक चीजें हैं उनके पीछे वो नहीं जाएगा, तो क्या करेगा, तो क्या होगा, वो ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करेगा। ज्ञान उसके हृदय में आएगा। ज्ञान के द्वारा वो जानेगा कि वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। और वो इस संसार से बाहर जाने का प्रयास करेगा कि मुझे इस संसार में नहीं रहना है, मुझे मोक्ष प्राप्त करना है। तो इस प्रकार से मैं परम सत्य को प्राप्त करूंगा ज्ञान के द्वारा, शास्त्रों को पढ़ूंगा, शास्त्र पढ़ते पढ़ते क्या होगा, मैं ध्यान करूंगा। लेकिन भगवान ने छठे चैप्टर में अर्जुन को बताया कि अष्टांग योगी जो है, जो ध्यान करता है, वो व्यक्ति ज्ञानी से श्रेष्ठ है। ज्ञानी मतलब जो ज्ञान अर्जित करता है, उससे जो ध्यान करने वाला है परमात्मा पे, जो ध्यान करता है वो श्रेष्ठ है। क्योंकि ज्ञान मतलब क्या है, आत्मा और शरीर का ज्ञान। हाँ, लेकिन उनके साथ एक समस्या बड़ी क्या है, ज्ञानियों के साथ, वो जो भगवान है उनको निराकार मानते हैं, लेकिन जो योगी है अष्टांग योगी वो किसका ध्यान करता है, आप लोगों को याद होगा, परमात्मा का ध्यान करता है। तो योगी जानता है कि परम सत्य जो है वो निराकार नहीं है, वो परमात्मा है, कण कण में विद्यमान है। तो ये उससे बेटर थिंकिंग है। हाँ, निराकार से बेटर थिंकिंग है ये। तो श्रीमद भागवतम में तीन तरीके बताए गए हैं भगवान को जानने के लिए। हाँ, वो क्या है, वदन्ति तत्त्वत् विदस्तत्त्वम् यजज्ञानमदव्ययम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो जैसे ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, तीन स्तर हैं भगवान को जानने के लिए। जैसे कभी कभी हम लोग ट्रेन से जाते हैं तो हमको बहुत दूर पहाड़ दिखाई पड़ता है, माउंटेन दिखाई पड़ता है, तो माउंटेन कैसा लगता है, जैसे कि बादल के समान दिखाई देता है। जब हम थोड़ा और पास आते हैं तो हमें दिखाई देता है कि हरियाली है वहां पे, कुछ पेड़ वगैरह भी हैं। और जब पास जाते हैं तो दिखता है कि अरे वहां पे तो कुछ झोपड़ियां भी हैं, कुछ ग्वाले भी हैं, गाय भी हैं, कुछ लोग भी हैं। तो ऐसे ही वो माउंटेन वही है, लेकिन सबसे पहले वाले व्यक्ति को क्या दिखा, बादल जैसा दिखाई दिया। दूसरे टाइम पे क्या ऐसा दिखाई दिया, जैसे कुछ वृक्ष वगैरह वहां पे निकले हुए हैं ऐसा दिखाई दिया। तीसरे में उसको प्रॉपर ज्ञान हुआ कि वहां पे वृक्ष भी हैं, वहां पे कुछ घर भी हैं, कुछ लोग भी वहां रहते हैं, ये प्रॉपर ज्ञान है। तो ऐसे ही पहला ज्ञान जो क्लाउड वाला है कि उसको लगा बादल हैं, वो क्या है, ब्रह्म का ज्ञान। फिर दूसरा ज्ञान जो हरियाली जैसी दिखाई दी, वो क्या है, परमात्मा का ज्ञान। और जब पूरा डिटेल में ज्ञान हुआ, वो कौन सा ज्ञान है, वो भगवान का ज्ञान है। तो ये तीन स्तर हैं, हम लोगों को याद होना चाहिए, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, इन तीन स्तरों के द्वारा भगवान को समझा जा सकता है। हालांकि सत्य हमेशा एक ही है, लेकिन ये तीन तरीके से उसको समझने का प्रयास किया जा सकता है। तो जितना ज्यादा हम डिटेल में जाएंगे उतना ज्यादा हम उसको समझ सकते हैं। तो जो निकटतम संबंध है यानी डिटेल्ड संबंध है, वो किसका है, वो भक्तों का संबंध है। भक्त भगवान को एज इट इज जानते हैं, भगवान कैसे हैं भक्त वो जानते हैं। लेकिन जो अन्य हैं, जो परमात्मावादी हैं यानी कि अष्टांग योगी हैं या फिर जो ज्ञानी हैं, वो उनको उस तरीके से नहीं समझ पाते। जो परमात्मावादी हैं यानी कि अष्टांग योगी जो हैं, वो क्या करते हैं, परमात्मा पे ध्यान लगाते हैं। तो जैसे भगवान का घर है गोलोक वृंदावन, ऐसे ही पार्लियामेंट है वैकुंठ, और भगवान की सरकार क्या है, पूरे जो देश में फैली हुई है, वो निराकार ब्रह्म है। तो भगवान का घर जो गोलोक वृंदावन है, वो एक प्लेस है जहां पे भगवान अपने घर जैसा रहते हैं। पार्लियामेंट है वैकुंठ, हाँ, जहां पे उनका ऑफिस है कह सकते हैं। और ये सरकार जो पूरे विश्व में उनकी फैली हुई है, वो क्या है, निराकार ब्रह्म के समान है। तो ज्ञानी जो है वो ब्रह्म तक पहुंच पाते हैं, योगी जो है वो भगवान के पार्लियामेंट तक यानी कि परमात्मा भाव तक, वैकुंठ तक पहुंच पाते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं वो भगवान के धाम, भगवान के घर तक पहुंचते हैं। तो इसलिए भगवान ने अभी फिलहाल यहां पे छठे चैप्टर में अष्टांग योग के बारे में बताया। तो अगर कोई व्यक्ति अपने मन को कंट्रोल कर लेता है, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है और उसके हृदय में जो इच्छाएं हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन की, इंद्रिय तृप्ति की जो इच्छाएं हैं, उनको अपने मन से निकाल देता है, तो तीन चीजें होती हैं। पहला, वो द्वंद्व से परे हो जाता है, यानी सुख दुख हाँ उसे फर्क नहीं पड़ता, हानि हुआ लाभ हुआ उसको फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, उसके लिए सोना हो या पत्थर हो सब समान हो जाता है, उसको इस संसार में ऐश्वर्य से कुछ लेना देना नहीं रह जाता। और तीसरा, उसके लिए कोई मित्र भी नहीं है और कोई उसके लिए शत्रु भी नहीं है, इस तरीके का भाव उसका हो जाता है। जब इस तरीके का भाव हो जाता है तो वो करे क्या इस संसार में रहते हुए, तो जंगल चला जाता है। जंगल में जाके वो परमात्मा पे ध्यान करने का प्रयास करता है। हमने बताया था अष्टांग योग में 8 अंग होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो इस तरीके से वो धीरे धीरे समाधि की ओर अग्रसर होता है और परमात्मा पे ध्यान लगाने का प्रयास करता है। लेकिन जब भगवान ने अर्जुन को बताया तो अर्जुन ने इस सबको तुरंत नकार दिया। हम लोगों में कौन ऐसा होगा जो जंगल में जाने का प्रयास करेगा, जंगल में जाके इस तरीके से ध्यान करने का प्रयास करेगा। अभी आजकल के संसार में अगर देखें तो कम से कम 99% लोग ऐसे हैं जो बीवी बच्चों वाले हैं, वो कैसे जाएंगे जंगल में। तो भगवान ने फिर अष्टांग उन्होंने बताया कि वो अष्टांग योगी जो होता है कर्म भी छोड़ देता है, कर्म के फलों को भी छोड़ देता है, केवल ध्यान करता है। लेकिन अर्जुन से कहा, सुनो तुम्हारे लिए वो नहीं है, क्योंकि तुम बीवी बच्चों वाले हो, तुम गृहस्थ हो, इसलिए तुम निष्काम कर्मयोग करो और अपने उनके जो फल हैं उसे मुझे अर्पित करो। अभी भगवान उस निष्काम कर्मयोग से भक्ति योग की तरफ अर्जुन को लेके आ रहे हैं। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं यहां पे 7वां अध्याय। देखिए 7वां अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि मैंने शुरू शुरू में बताया था, कोई बॉक्स होता है तो बॉक्स का एक ऊपर वाला हिस्सा होता है जो खुलता है और एक नीचे होता है जिसमें कुछ सामान रखा जाता है। तो ये भगवद गीता 18 अध्याय का 6 चैप्टर जो है वो ऊपर वाला बॉक्स का हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा, और जो लास्ट के 6 चैप्टर हैं 13 से लेकर 18 तक वो नीचे वाला हिस्सा है। और जो उसके अंदर उस बॉक्स के अंदर ज्वेलरी रखी हुई है, यानी ज्वेलरी बॉक्स है, तो जो ज्वेलरी रखी हुई है वो है 7 to 12 चैप्टर भक्ति योग। जो पहले के 6 चैप्टर हैं वो कर्म योग हैं, जो लास्ट के 6 चैप्टर हैं वो ज्ञान योग हैं, और बीच के जो 6 चैप्टर हैं वो है भक्ति योग। भगवान ने भक्ति का महत्व इसमें बताया हुआ है, बहुत सुंदर अध्याय है सारे के सारे। तो हम जैसे कि दूसरा एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि कोई ब्रेड खाते हैं, ब्रेड, दो ब्रेड होती है, बीच में जैम लगाते हैं, है ना। तो ऐसे ही ये भगवद गीता कैसे है, शुरू के 6 चैप्टर ब्रेड और लास्ट के 6 चैप्टर ब्रेड, और बीच का जो जैम है जो इसका मेन पार्ट है वो क्या है, भगवद गीता के बीच के 6 अध्याय, 7वें अध्याय से लेके 12वें अध्याय तक। तो ये बहुत स्वीट है, ये जो 6 अध्याय हैं बहुत अच्छे अध्याय हैं, बहुत सुंदर अध्याय हैं। तो भगवान ने 6वें चैप्टर में अर्जुन से कहा कि तुम अपने मन को कंट्रोल में करो, और जो तुम्हारे लिए भक्ति में अनुकूल हो उसको स्वीकार करो और जो भक्ति में अनुकूल नहीं हो उसको रिजेक्ट कर दो। तो भक्ति में 9 प्रोसेस, 9 भक्ति बताई जाती, 9 भक्ति की जाती। तो 9 भक्ति करते हुए तुम इस संसार में रह सकते हो, कर्म के फलों को त्याग दो, इस तरीके से धीरे धीरे तुम्हारा मन जो है वो कंट्रोल में आ जाएगा। तो अर्जुन कहता है अगर मैं अपने मन को कंट्रोल में नहीं कर पाया और इधर मैंने भौतिक जीवन तो छोड़ दिया, इंद्रिय तृप्ति छोड़ दी, और उधर मैंने मन भी कंट्रोल में नहीं कर पाया, तो न तो घर का रह जाऊंगा ना घाट का रह जाऊंगा। तो भगवान कृष्ण का, अर्जुन जो कोई भी मेरे से संबंधित कुछ भी कार्य इस संसार में करता है उसका अंत नहीं होता है, वो जो कार्य है वो खत्म नहीं होता। जैसे किसी ने 20% भक्ति किया और कुछ इमरजेंसी हुई, उसको भौतिक इच्छाएं हो गई, जैसे विश्वामित्र जी को हुई थी, तो उनको छोड़ना पड़ा, लेकिन वो खत्म कभी भी नहीं होगा। तो क्या होगा, अगला जन्म मिलेगा, ब्राह्मण परिवार में जन्म मिलेगा, स्वर्गलोक मिलेगा, तो वहां से क्या होगा, तुरंत भक्ति फिर से शुरू कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से भगवान ने बताया, फिर बोला कि ये तो 20-30% वालों के लिए, जिन लोगों ने 70-80% तक भक्ति कर लिया है ऐसे लोग आचार्यों के घर में जन्म लेंगे, उनको भक्ति शुरू से ही घरों में मिलेगी, परिवार में भक्ति मिलेगी। जैसे शिला प्रभुपाद, वो छोटे पर से ही राधा कृष्ण की आरती करते थे, रथ यात्रा निकाला करते थे, जब वो लोग यहाँ तक कि पतंग उड़ाते थे तो पतंग उड़ाते समय क्या प्रेयर करते थे, बोलते हैं हमारी पतंग हे कृष्णा हमारी पतंग को ऊपर उड़ा दो। हाँ, इस तरीके से भगवान में पूरी डिपेंडेंसी रहती थी। हाँ, ऐसे रथ यात्रा करते थे तो रथ यात्रा में 9 दिन का फेस्टिवल हुआ करता था, यहाँ तक कि बड़े बड़े लोग भी उसमें पार्टिसिपेट किया करते थे, ये बच्चों की रथ यात्रा निकलती थी। तो ये जो बच्चे हैं ये सामान्य फैमिली में जन्म नहीं लेते हैं, जैसे कि प्रभुपाद जी के गुरु महाराज, वो भी एक बहुत बड़े संत थे भक्ति विनोद ठाकुर, उनके घर में जन्म लिए थे। ऐसे परीक्षित महाराज जो कि उत्तरा के गर्भ से जन्म लिए थे, उत्तरा कौन है, जो कि अभिमन्यु की पत्नी है, अभिमन्यु के पिता जो है अर्जुन और पांडव इत्यादि, वो सब भगवान के मित्र हैं, भगवान के सखा हैं, भगवान के संबंधी। ऐसे ही उद्धव, उद्धव के बारे में आप तो सुना होगा, उद्धव जब छोटे थे तो उद्धव जो खेल खेलते थे, जैसे गुड्डा गुड़िया का खेल खेला जाता है, तो उनके पास कृष्ण का डॉल हुआ करता था, वो उसको ही डेकोरेट करते थे, हमेशा उसके श्रृंगार करते रहते थे, ये उद्धव थे। उनकी मम्मी उनको, माँ उनको बुलाती थी, आ जाओ लंच का टाइम हो गया है, वो बोलते थे नहीं नहीं मैं थोड़ा बाद में आऊंगा, अभी मैं खेल रहा हूँ। ऐसे परीक्षित महाराज। तो ऐसे ही हम भी छोटे थे तो हमको भी पहले छोटे छोटे मूर्तियां मिलती थी खेलने को। हाँ, वो मूर्तियां विष्णु की मूर्तियां होती थी, लक्ष्मी जी की मूर्तियां होती थी, मिट्टी की बनी हुई सरस्वती जी की मूर्तियां होती थी। तो मान लीजिए वो वीणा बजा रहा है, वीणा बजा रही है कोई माता जी है, तो पूछते थे कौन है, तो हम लोग बोले सरस्वती माँ है। या जैसे लक्ष्मी जी, वो उनके हाथों से क्वाइंस गिर रहे हैं, सिक्के गिर रहे हैं, तो हमारे लक्ष्मी जी हैं। ऐसे विष्णु, राम, धनुष बाण लिए हुए तो राम जी हैं, बांसुरी लिए हुए तो कृष्ण है। तो इस तरीके से जीवन में जो भगवान के विग्रह हैं उनको पहचानना बहुत आसान हो जाता था, लेकिन अभी ये कल्चर बिल्कुल चला गया। मैं अभी रिसेंटली गया था एक दुकान पे, टॉय जहाँ पे खिलौने विलौने मिलते हैं, मैंने देखा कि ऐसी मूर्तियां जहाँ पे जो भगवान की मूर्तियां, ये तो मिलते ही नहीं है अभी। अभी आप जहाँ वहां पे जाएंगे तो सारे कार्टून कैरेक्टर्स, उनके जो भी इंस्ट्रूमेंट रहते हैं वो सब मिलेंगे, क्रिकेट की चीजें, फुटबॉल की चीजें, तो पूरा जमाना चेंज हो गया। ये सब पहले दिया जाता था जिससे धीरे धीरे आप आगे बढ़ो और भक्ति को अपने जीवन में स्वीकार करो। तो भक्ति में इस ये सब से जब शुरुआत से ही किसी बच्चे को ये सारी चीजें पता रहती हैं तो क्या होता है, उसको भक्ति को स्वीकार करना बड़ा इजी हो जाता है। श्रीमद् भागवतम में एक गजेंद्र की कथा आती है, गजेंद्र और ग्राह की कथा आती है। उसमें एक गजेंद्र एक हाथी था, वो बहुत इग्नोरेंट था, बहुत तामसिक हाथी था, और जब वो चलता था, वो जंगल का वो राजा था वास्तव में, जब वो चलता था तो कई सारे पेड़ों को ऐसे उखाड़ता हुआ चलता था, बहुत इगोइस्टिक था। एक दिन क्या हुआ, वो चलते चलते एक सरोवर के पास पहुंचा और बहुत प्यास लगी थी, उस सरोवर में उतर के वो पानी पीने लगा। उसी समय एक मगरमच्छ ने उसके पैर को पकड़ लिया और मगरमच्छ ने पैर पकड़ के उसको पानी के अंदर खींचने लगा। अभी मगरमच्छ तो जो है वो पानी का जानवर है और ये हाथी जो है ये पानी का नहीं है, इसलिए पानी में उसको दिक्कत हो रही थी। तो ये जो हाथी था इसने बहुत प्रयास किया अपना, बहुत प्रयास किया, कुछ नहीं हुआ। तो इसने क्या किया, इसने पिछले जन्म में जब वो एक राजा था, उसका नाम था इंद्रदुम्न, ये राजा, इसने कुछ प्रेयर्स, कुछ प्रार्थनाएं जो हैं वो करी हुई थी, उन प्रार्थनाओं को इसने याद किया और उन प्रार्थनाओं को इसने दोहराया उस हाथी ने। अभी उसको कुछ मिला नहीं तो वहां पे कमल का फूल था, उसने अपनी सूंड से उस कमल के फूल को लेके भगवान को अर्पित करने का प्रयास किया। अभी ये इंद्रदुम्न कौन था, वास्तव में पिछले जन्म में एक राजा इंद्रदुम्न था, और इंद्रदुम्न ने क्या किया, वानप्रस्थ ले लिया, यानी कि ब्रह्मचरी, उसके बाद गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ, जब वन में चले जाते हैं तो वानप्रस्थ ले लिया, और वानप्रस्थ में ये एक जंगल में जाके तपस्या कर रहे थे। उसी समय अगस्त ऋषि वहां पे आए कुछ अपने शिष्यों के साथ। अब ये राजा थे, इनके पास सुविधाएं भी मौजूद थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, उनको सही से रिसीव नहीं कर पाए, उनका गेस्ट रिसीव जो है वो अच्छे से नहीं हुआ, तो वो अगस्त ऋषि क्रोधित हो गए और अगस्त ऋषि ने उनको एक श्राप दे दिया कि अगले जीवन में तुम मंद बन जाओ, हाथी बन जाओ। तो कभी कभी लोग पूछते हैं ये ऋषि लोग श्राप क्यों देते रहते हैं, लेकिन श्राप के साथ साथ में वरदान भी होता है। अभी वो भले ही वो मनुष्य का शरीर था उसके पास, लेकिन उसके लिए कठिन था भगवत धाम जा पाना, लेकिन अगले जीवन में जब वो हाथी का शरीर पाया तो उसी जन्म में वो भगवान को प्राप्त कर लिया उसने। तो जैसे ही इस हाथी ने कमल के फूल को भगवान को ऑफर किया, तुरंत भगवान आ गए और भगवान ने सबसे पहले उस ग्राह, वो जो मगरमच्छ था, उसका गला काटा और उसके बाद जो है हाथी को उससे मुक्त कराया और अपने धाम पे लेके चले गए भगवान। भगवान ने अपना दूत बना लिया उनको, उस हाथी को, और खास करके उस ग्राह को भी। वो जो मगरमच्छ था उसने भी एक वैष्णव का चरण पकड़ा हुआ था, इसलिए उसको पहले मुक्ति दे दिया भगवान ने। तो ये देखते हैं यहां पे पिछले जन्म का किया हुआ उसको बेनिफिट मिलता है। ये सबके साथ लागू होता है, इवन जानवरों के साथ भी लागू होता है, ये ध्यान देना चाहिए यहां पे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि पिछले जीवन में की गई जो भक्ति है वो हमारे अभी के जीवन में श्रद्धा को डेवलप करती है, श्रद्धा को फ्लोरिश करती है, श्रद्धा को बढ़ाती है, और हमें अगले जीवन में हम भगवान को प्राप्त कर पाए ये चीज जो है हमारे लिए अनुकूल कर देती है। वो हमें भगवान कृष्ण में टेस्ट देती है। जो कुछ भी हमारे अंदर अवगुण होते हैं मृत्यु के साथ वो अवगुण खत्म हो जाते हैं और हम जो है अगले जन्म में प्योर हो जाते हैं। तो इस तरीके से भगवान ने दूसरे अध्याय में भी ये श्लोक बोला हुआ है, नेहा विक्रम नासो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, कि इस पथ में की गई थोड़ी सी प्रगति भी बड़े से बड़े जो है दुख से हमारी रक्षा कर सकती है। तो यहां पे मुख्य बात जो छठे अध्याय में भगवान कृष्ण ने समझाई वो ये थी कि कोई भी आप योगिक पद्धति लो, चाहे ज्ञान योगी हो, चाहे अष्टांग योगी हो, चाहे कर्म योगी हो, लेकिन आपको अंत में भक्ति योग तक आना ही पड़ेगा, भक्ति योग तक आना पड़ेगा। इसलिए कर्मयोगी लोग भगवान ने बताया यज्ञानार्थ कर्मणो नेत्रा लोकोयम कर्म बंधना। हाँ, तो यज्ञ के लिए कर्म करो, यानी विष्णु के लिए कर्म करो। ज्ञानियों के लिए भगवान बोलते हैं बहु नाम जन्मना मन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत बहुत जन्म लेने के बाद जो ज्ञानी लोग हैं उनको समझ में आता है कि अरे कृष्ण जो है वही सब कुछ है। ऐसे चार कुमार जो हैं वो ज्ञानी थे, चार कुमार जो ब्रह्मा जी के चार पुत्र हैं सनक सनातन सनंदन और सनत कुमार, ये लोग ज्ञानी हुआ करते थे। एक दिन इन्होंने भगवान कृष्ण के चरण कमलों में चढ़ी हुई तुलसी का आस्वादन किया, उनकी स्मेल जो महक थी उसको सूंघा और वो भगवान के भक्त बन गए। ऐसे ही जो योगी होते हैं अष्टांग योगी, उनके लिए भी भगवान कहते हैं योगी नाम अभी सर्वेशाम मद गते नांतरात्मना, यानी योगियों में मुझे भक्ति योगी जो है वो सबसे ज्यादा प्रिय है। तो इस तरीके से अर्जुन जो है भगवान से कहता है कि आपने मुझसे कहा कि एकांत में रहो, जंगल में रहो, ये मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरा मन जो है वो इधर उधर भागता रहता है, घूमता रहता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं चिंता मत करो, जो योगी मेरे ऊपर ध्यान करता है योगी नाम अभी सर्वेशा मध्य देना अंतरात्मना, वो योगी जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, ये मेरा मत है। ये भगवान ने जो है अंत में उसको प्रूव किया। उन्होंने बोला कि वो संसार में रहते हुए भी पद्म पत्र की तरह रहता है, पद्म पत्र मतलब कमल के पत्ते की तरह रहता है। कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी अगर आप पानी से निकालेंगे उसको तो उसमें पानी लगा हुआ नहीं रहता, पता नहीं उस पर कौन सी ऐसी परत चढ़ी रहती है कि पानी उसको टच भी नहीं कर पाता। तो ऐसे ही ये व्यक्ति संसार में रहता है, सिटी में रहता है, क्रियाशील रहता है, लेकिन कभी भी वो फंसता नहीं है संसार में। जैसे कि शिला प्रभुपाद वो अमेरिका गए, अमेरिका में जहां पे हिप्पीज लोग उस समय हुआ करते थे, उस समय वो वहां गए और वहां पे जाके भी उन्होंने सबको जो है भगवान की भक्ति का प्रचार किया, क्योंकि कृष्ण उनके साथ में थे, क्योंकि भगवान कहते हैं वो मेरे साथ में रहता है हमेशा। जो व्यक्ति इस तरीके से होता है वो मेरे साथ रहता है, मुझ में रहता है, वो बोलते हैं भगवान। तो कहावत है हाथ में काम मुख में नाम और मन में राम होना चाहिए, हाथ में काम होना चाहिए, मुख में भगवान का नाम होना चाहिए और मन में हमेशा राम रहने चाहिए। तो इस तरीके से अभी भक्ति योग स्टार्ट होता है। तो देखिए कर्म योग में कर्म पे जोर दिया गया, ज्ञान योग में किताबें पढ़ने शास्त्र पढ़ने इत्यादि पे जोर दिया गया, अहम ब्रह्मास्मि उस पर ध्यान करने पर जोर दिया गया। अष्टांग योग में बताया गया कि भाई सारे ब्रह्म का जो सोर्स है वो परमात्मा है, इसलिए परमात्मा का ध्यान करो। लेकिन जो भक्ति योगी है वो क्या करता है, वो भगवान कृष्ण का स्मरण करता है और अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है। तो अभी सातवें अध्याय में भगवान उसका वर्णन करेंगे। तो कई बार लोग कहते हैं कि वो कृष्ण को जानते हैं, क्या बोलते हैं कि हम कृष्ण को, हमें मालूम है कृष्ण कौन है, लेकिन वो क्या जानते हैं भगवान के बारे में, बहुत कम जानते हैं भगवान के बारे में। तो भगवान अपने बारे में भी यहां पर बताएंगे। तो ये सातवां अध्याय जो है आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये चार पार्ट में डिवाइड है, हियरिंग एवरीवेयर एक्सेप्ट और रिजेक्ट एंड डेमिगॉड्स। पहले तीन श्लोकों में भगवान श्रवण की महिमा के बारे में बताते हैं चार से लेकर 12 तक भगवान बताते हैं कि उस किस तरीके से सर्वत्र विद्यमान है, और स्वीकार अस्वीकार करने के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे 13 से 19 के बीच में, और देवी देवताओं के बारे में भगवान जो है 20 से 30 में बताते हैं। तो भगवान कहते हैं किस तरीके से जब कोई व्यक्ति कृष्ण के बारे में सुनना शुरू करता है तो क्या होता है, उसकी जो श्रद्धा है, उसका जो आदर है वो बढ़ता है, और धीरे धीरे उसके अंदर प्रेम भगवान के प्रति जागृत हो जाता है। दूसरा, भगवान हर जगह विद्यमान है ये उसको समझ में आ जाता है। तीसरा, वो ये जान जाता है कि भगवान कृष्ण सारी वस्तुओं के सार हैं। चौथा, कुछ लोग मानते हैं कि कृष्ण है और कुछ लोग मानते हैं कि कृष्ण नहीं है, तो ये व्यक्ति का दृढ़ विश्वास हो जाता है। और कुछ लोग जो होते हैं वो भगवान की शरणागति ना लेकर देवताओं की शरणागति लेते हैं। इन पांच टॉपिक के बारे में ही ये 7 से 12 में चर्चा होगी, खास करके 7वें अध्याय में। चलिए शुरू करते हैं। Chapter 7, Lesson 1, हियरिंग, श्रवण। कोई पढ़िए इसको, अध्याय 6 और 7 के बीच में संबंध। आप लोगों को दिखाई दे रहा है?
हरे कृष्णा प्रभु।
हाँ पढ़िए।
श्लोक 6.43 में कृष्ण बताते हैं कि समस्त योगियों में जो योगी उनके विषय में सोचता है और उनकी बीवियां प्रेमा भक्ति करता है वह सर्वोच्च है, मत गते सनात्मना। अब श्लोक 7.1 से कृष्ण समझाते हैं कि यह कार्य कैसे किया जाए। श्लोक 6.43 में यह भी कहा गया है कि योगी को कृष्ण की श्रद्धा पूर्वक भक्ति करनी चाहिए। श्रद्धा ज्ञान से आती है, ज्ञान के बिना व्यक्ति कृष्ण की सर्वोच्चता के बारे में संशय कर सकता है। अतः अध्याय 7 से 12 में श्री कृष्ण अपने बारे में दिव्य ज्ञान, मैं ही परम सत्य और पूर्ण पुरुषोत्तम हूँ प्रदान करते हैं, भक्तों की भक्ति को प्रोत्साहित और सुदृढ़ करने के लिए।
हाँ ठीक है, तो भक्तों की भक्ति को प्रोत्साहित और सुदृढ़ करने के लिए, भक्तों की भक्ति को प्रोत्साहित और सुदृढ़ करने के लिए भगवान अपने दिव्य ज्ञान को प्रदान करते हैं। तो अभी 7.1-3, श्रवण करने से कृष्ण के बारे में ज्ञान मिलता है। श्री भगवान उवाच, मैं आसक्त मना पार्थ योगम युञ्जन्मदाश्रया असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। भगवान कहते हैं कि श्रवण जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, अभी तुम मेरे वो सुनो। तो गीता का जो आदेश है वो अनासक्त होना नहीं है, बल्कि कृष्ण के ऊपर आसक्त होना है। जो और ज्ञान और अष्टांग है उसमें अनासक्त होने पे ज्यादा फोकस दिया जाता है कि इससे सबसे दूर रहो, इंद्रिय विषयों से दूर रहो। लेकिन भक्ति योग में क्या है, आप इंद्रिय विषयों से दूर मत रहो, उनको भगवान की सेवा में लगाओ। ये तो जब जो मन है, जो हमारा माइंड है, वो जब इंद्रियों के द्वारा प्रदूषित हो जाता है तो वो आत्मा को अधोगति की ओर लेके जाता है। लेकिन अगर वही मन इंद्रियों के द्वारा भगवान के बारे में ज्ञान को ग्रहण करता है, गुरु परंपरा से ज्ञान ग्रहण करता है, तो वह आत्मा को उच्च लोकों की ओर लेके जाता है। तो ये जो मन है ये हमारा मित्र भी है और शत्रु भी है। शत्रु कब है, जब हमको अधोगति की तरफ ले जाए। मित्र कब है, जब हमको उच्च लोकों में लेके जाए। तो भक्ति योग में अगर कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण से आसक्त हो जाता है तो भौतिक चीजों की, भौतिक जो सांसारिक जो चीजें होती है ना, उनसे वो ऊपर उठ जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बताते हैं, जो बल्ब होता है, अभी इस बल्ब में आपको वैक्यूम करना है, वैक्यूम स्थापित करना है, तो क्या करना पड़ेगा, बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि हवा हर जगह विद्यमान रहती है, हवा को कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ गैसेज ऐसी होती हैं, अगर आप उनको गैसेज को अगर उसके अंदर भर दोगे तो वो ऑक्सीजन को बाहर भेज देता है। ठीक वैसे ही अगर हम भगवान के बारे में सुनना शुरू कर दें तो क्या होगा, भगवान हमारे मन के अंदर आ जाएंगे, और हमारे मन के अंदर आके भगवान खुद ही हमारे मन में जितने भी इम्प्योरिफिकेशन भरा हुआ, जो भी इम्प्योरिफाइड थिंग्स हैं, उनको सबको वहां से निकाल के फेंक देंगे, सारी प्रदूषित चीजों को निकाल के फेंक देंगे। कैसे करना है, सुन के, त्रच्छुणु, वो सुनो सुन के। ज्ञानम तेहम विज्ञानम, ये ज्ञान भी है और विज्ञान भी है। भगवान कहते हैं मैं तुमको दोनों बताऊंगा, क्या भौतिक संसार के बारे में बताऊंगा और आध्यात्मिक संसार के बारे में बताऊंगा। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुमको जो बताने जा रहा हूं इस ज्ञान के बाद तुमको जानने योग्य और कुछ भी नहीं रह जाएगा, सब कुछ जान जाएंगे। ज्ञानम ते हम सभी ज्ञानम इदम वक्ष्याम्य शेषतः यज ज्ञातवाने भूयो न्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते। ऐसा ज्ञान देने जा रहा हूं कि इसके पास कुछ भी अवशिष्य नहीं रह जाएगा, सब कुछ पता चल जाएगा। तो अभी 7 और 8 में भगवान ज्ञान के बारे में बताते हैं अध्याय, और 9 में विज्ञान, और 10-11 में दोनों को बताएंगे। अभी इस विज्ञान के दुर्लभता के बारे में भगवान बता रहे हैं, कितना दुर्लभ है ये भक्ति, उसके बारे में सुनिए। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित्तति सिद्धये यत्तामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेति तत्त्वतः। अब देखिए छोटा सा हमने फिगर बनाया है, आपको दिख रहा होगा हजारों लाखों लोग हैं, सब अलग अलग जीव अलग अलग शरीर में घूम रहे हैं। कोई मनुष्य जीवन को प्राप्त करता है, कोई अन्य किसी योनि को प्राप्त करते हैं। तो मनुष्य योनि को प्राप्त करने के बाद उनके कर्म का जो है शुरू होता है। 90% लोग जो हैं वो इंद्रिय तृप्ति में बिजी हैं, उनको भगवान के बारे में रत्ती भर भी नॉलेज नहीं है, 0, 90% लोग ऐसे हैं। और जो लोग 10% बचे उनमें से 90% ऐसे हैं जो भगवान के पास जाते हैं और कुछ भौतिक चीजों को मांगते हैं। वो लोग क्या करते हैं, हमको पढ़ाई में नंबर आ जाए, हमारी शादी अच्छे से हो जाए, नौकरी लग जाए, इन सब चीजों को भगवान से मांगना शुरू कर देते हैं। तो भगवान कहते हैं जो मेरे पास आते हैं ना वो ज्ञानी और योगियों से भी बढ़कर है। तो अभी कुछ लोग ही ऐसे होते हैं, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, हजारों हजारों मनुष्यों में से कश्चित अति सिद्ध है, कुछ होते हैं वो सिद्धि प्राप्त कर सिद्ध हो जाते हैं। जैसे कि वो बीच में आपको एक ऋषि दिखाई दे रहे होंगे, दो सर्कल के बीच में एक ऋषि दिखाई दे रहे हैं वो। और ऐसे जो कई सारे हैं यदताम अभी सिद्धानाम, ऐसे जो कई सारे सिद्ध लोग हैं उसमें से कश्चिन माम वेति तत्वता, उसमें से कोई एक बिरला व्यक्ति मुझे तत्व के साथ जान पाता है। वो देखिए लास्ट में सबसे नीचे जो ऋषि हैं वो कृष्ण के बारे में सही से जान पा रहे हैं। तो जो ज्ञान जाता है वो क्या करना चाहता है, वो संसार से बाहर निकलना चाहता है। कोई कह सकता है इस संसार से बाहर क्यों जाएं, तो बाहर क्या जाने की जरूरत है। तो दूसरे अध्याय में भगवान ने बताया है कि ये जो आत्मा है ये बधी हुई है इस शरीर में, और काम और क्रोध और लोभ के द्वारा हम इसको और बांध ही रहे हैं। इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे कल दुस्तारे कृपया पारे पाही मुरारे। पुनरपि जन्मम, बार बार जन्म लेना पड़ रहा है। पुनरपि मरणम, बार बार मृत्यु होती, जितने जन्म उतनी मृत्यु। पुनरपि जननी जठरे शयनम, मां के गर्भ में शयन करना पड़ता है 9 महीनों तक। यह संसारे कल दुस्तारे, संसार में बहुत कष्ट है, इसलिए कृपया पारे पाही मुरारे। अभी मुरारी की शरण लेके जो है संसार से पार पाया जा सकता है। तो जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो जानते हैं कि अगर मैं जन्म लूंगा तो मेरी मृत्यु होगी। आप लोगों में से आप लोग भी गए होंगे कभी, बड़ा झूला जो आता है मेला वगैरह लगता है तो उसमें झूला होता है, बहुत बड़ा झूला होता है, बहुत ऊंचा झूला होता है। मेरे को बहुत डर लगता था भाई दीवे लेकिन एक बार एक मेरे कजिन भाई वो मेरे को लेके उसमें जबरदस्ती बैठ गए, तो उस दिन मुझे अनुभव हुआ कि वो जब झूला जब ऊपर की ओर जाता है तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है। हम ऊपर जाते हैं तो हमें दिखाई देता है पूरा शहर दिखाई देता है और सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन जब वो नीचे की तरफ आता है ऐसा लगता है कि जहां पे मैं बैठा हूं वो भी टूट जाएगा, गिर जाएगा और मैं भी गिर पड़ूंगा। हर कोई उस समय जो है बहुत डरा हुआ रहता है, कोई कोई इस डर से मुक्ति पा लेते हैं बहुत बार झूला झूल के, लेकिन ज्यादातर लोग जो है बहुत डरे हुए रहते हैं जब खास करके वो झूला नीचे आता है। तो जब कोई व्यक्ति ऐसे ही स्वर्ग की तरफ जाता है बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब वो नीचे आता है नरक की तरफ आता है खूब पिटाई होती है वहां पे। कभी राजा बनता है, कभी प्रजा बनता है, कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है। तो जैसे मान लीजिए आप एक बहुत बढ़िया गद्दे पे बैठे हुए हैं, हाँ, और एक व्यक्ति आता है अरे थोड़ा गद्दा छोड़ो, मुझे गद्दा चाहिए, और गद्दा ले लेता है, कंबल दे देता है। फिर थोड़ी देर बाद दूसरा व्यक्ति आता है, कंबल छीन लेता है, कहता है ये लो चादर ले लो, चादर पे बैठ जाओ। हाँ, फिर चौथा व्यक्ति आता है, वो चादर ले लेता है, बोलता है लो मैट पे बैठ जाओ। तो व्यक्ति कहता है अरे यार बार 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 ये सब क्या चल रहा है, मुझे इससे मुक्ति पानी ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो ऐसे ही जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वो चाहता है उसे ये जो शरीर मिल रहा है, मुझे ये शरीर नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए, मैं मोक्ष को प्राप्त करना चाहता हूं, मैं इटर्नल ब्लिस को प्राप्त करना चाहता हूं, शाश्वत आनंद को भोगना चाहता हूं। वो शाश्वत आनंद कहां पे? इस संसार में नहीं है, उसके लिए बाहर जाना पड़ेगा। उत्तिष्ठ जाग्र प्राप्य वरा निबोधात, तुमको शरीर प्राप्त हुआ, उत्तिष्ठ खड़े हो जाओ, जाग्र जग जाओ, प्राप्य वरा निबोधात, अपने जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करो। इसलिए तुमको यह मनुष्य शरीर मिला है, अब भक्ति करो, भक्ति की सुकृति को प्राप्त करो। तो तीन तरीके, तीन चीजें होती हैं, एक होता है पुण्य, एक होता है पाप, एक होता है भक्ति की सुकृति, भक्ति सुकृति। तो जो पहले दो हैं पुण्य और पाप, ये इटर्नल नहीं है, शाश्वत नहीं है, हमेशा रहने वाले नहीं है, लेकिन जो भक्ति की सुकृति है वो हमेशा रहने वाली है। भक्ति की सुकृति आपने देखा अभी गजेंद्र के एग्जाम्पल में, हमने हाथी के एग्जाम्पल में देखा कि वो भक्ति की सुकृति खत्म नहीं हुई, और भले उसको हाथी का शरीर मिला लेकिन उसको सब कुछ याद था। तो यहां तक ये जानवरों के साथ भी होता है। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज एक एग्जाम्पल दे रहे थे, बोल रहे थे कि एक बार पद यात्रा में एक कुत्ता उनको ज्वाइन कर लिया, कई सारे भक्त लोग जा रहे थे यात्रा में, हाँ बड़ी लंबी पदयात्रा चलती है, उसमें उस कुत्ते ने ज्वाइन कर लिया, और कुत्ता लोग सोचे अभी थोड़ी देर चलेगा, छोड़ देगा अपना गांव निकल जाएगा, तो वो कुत्ता चलता ही रहा, चलता ही रहा, चलता ही रहा साथ में। और क्या होता था, रात को सब भक्त सो जाते थे, सुबह मंगला आरती होती थी 4:30 बजे, तो सब भक्त 3:30-4 बजे से उठने लगते थे, ये कुत्ता भी उठ जाता था 4 बजे तक, हालांकि वो नहाता और ब्रश नहीं करता था, लेकिन 4 बजे उठ के मंगला आरती अटेंड करता था। तो इसका मतलब क्या है, पिछले जन्म से वो भक्ति की सुकृति को लेके आया है। एक बार की बात है, गंगा नदी के किनारे उस कुत्ते ने शरीर त्याग दिया, तो भक्तों ने क्या किया, उसको प्रॉपर संस्कार किया उसको कुत्ते का। और मेरे साथ भी एक बार घटना घट चुकी है, मैं परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज के साथ एक बार परिक्रमा कर रहा था, तो एक कुत्ता हम लोगों के साथ चलने लगा, तो मुझे लगा ये थोड़ी देर चलेगा, चला जाएगा, लेकिन वो क्या करता था, हमसे स्पीड थोड़ी इसकी ज्यादा थी, तो थोड़ा सा आगे जाके रुक जाता था, फिर हम लोग जैसे उसको क्रॉस करते थे फिर उठता था और फिर भाग के आगे हमसे निकल जाता था। 21 किलोमीटर की परिक्रमा है गोवर्धन की, वो पूरे टाइम हमारे साथ रहा, रास्ते में बहुत भीड़, कभी रास्ता सही है कभी नहीं सही है, लेकिन वो कुत्ता सब तरीके से पूरी परिक्रमा किया उसने हमारे साथ। मैं देख के हसरस था, मैंने महाराज से कहा, तो महाराज बोले कि लास्ट टाइम जब मैं परिक्रमा करने आया था तब भी ये मेरे साथ में ऐसे ही परिक्रमा किया था। तो क्या इसका मतलब क्या है, पिछले जन्म की सुकृति उसको मिली हुई है। आप लोगों को मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, पर सर इसमें वीडियो है कि नहीं है, लेट मी सी। हाँ मिल गया, देखिए ये मैथ का टीचर है,
give me answer. फाइव माइनस टू फाइव माइनस फोर सिक्स माइनस थ्री सेवन माइनस फोर एट माइनस फोर टेन माइनस थ्री
आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से ये कुत्ता मैथ का टीचर रहा होगा शायद पिछली बार। तो पिछले जन्म से संस्कार मिलके भक्ति सुकृति जो है जैसे इस कुत्ते के शरीर में भी आत्मा है, तो ये जो मन है, मन के अंदर शुभ और अशुभ वासनाएं रहती हैं, उन वासनाओं को हम कलेक्ट करते हैं एक जीवन में और अगले जीवन तक उसको लेके जाते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि हजारों लोगों में से कोई एक जिज्ञासु होता है और हजारों जिज्ञासुओं में से केवल एक व्यक्ति जो है वो कृष्ण को समझने का प्रयास करता है। मनुष्याणाम शास्त्रेषु कश्चित् ततिसिद्धः यत्तम अभिसिद्धानां कश्चिन् माम वेति तत्त्वतः। तो भक्त जो है वो बहुत दुर्लभ है। ज्ञानी और योगी मिल सकते हैं लेकिन भक्त तो बहुत दुर्लभ। तभी आगे के श्लोकों में चार और पांच में भगवान बताएंगे कि किस तरीके से वो आध्यात्मिक संसार और भौतिक संसार में विद्यमान है। भगवान कहते हैं भूमिरापोन लो वायु खम्मनो बुद्धिरेव चा अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। ये आठ चीजें भगवान ने बताई हैं। भूमि आप अनल वायु खम मन बुद्धि और अहंकार, ये आठ चीजें भगवान बोलते हैं ये भिन्ना प्रकृतिरष्टधा, ये भिन्न प्रकृति है मुझसे। तो भिन्न प्रकृति में यह आठ तत्वों से मिलकर बनी हुई है। मैंने इसको बनाया है, मैं इसका कंट्रोलर हूं। तो जैसे ये संसार जो है भगवान बोलते हैं ये मेरी प्रकृति है, मैंने इसको बनाया है, मैं इसके कंट्रोल में हूं, मैं इसको कंट्रोल करता हूं। जैसे मान लीजिए आप किसी घर में जाते हैं तो घर में जाने के लिए आपको परमिशन चाहिए रहती किसी उस व्यक्ति की। तो भगवान जो है वो हर घर के कंट्रोलर हैं। ईसा वास्तव इदम सर्वम, सब कुछ किसका है? ईश्वर का है। इसलिए तुम्हें मालिक पता होना चाहिए कौन है। अभी हम लोगों की स्थिति क्या है, एक बार एक व्यक्ति एक पेड़ के नीचे, बहुत गर्मी थी तो एक पेड़ था, वट वृक्ष था, वट वृक्ष के नीचे थोड़ा छाया भी थी और ठंडी भी लग रही थी, तो उधर वो व्यक्ति लेट गया। अभी वहां पे कुत्ता आ गया तो इस व्यक्ति ने क्या, कुत्ते को पत्थर मार के भगाने लगा। वो पेड़ बोला, अरे मूर्ख, मैंने तुझे छाया दी हुई है और मैं उसको भी छाया दे रहा हूं, तुझे क्या प्रॉब्लम है? लेकिन हम लोग ये ऐसे ही ना, इंसान शांति से जीता है और ना किसी को जीने देता है, दूसरे की चीजों को भी छीनता है, उनको क्लेश देता है। जैसे दुर्योधन रावण, अपने आप शांति से जीवन जियो ना, नहीं परेशान करना है दूसरों को परेशान करने में ज्यादा मजा आता है। कहते हैं कि आजकल व्यक्ति जो है वो दूसरे के दुख से, अपने दुख से दुखी नहीं है, जो उसको दुख मिलता है उससे दुखी नहीं है, पर दूसरे के सुखों से दुखी है। वो दूसरा कैसे इतना सुखी है उसमें वो दुखी रहता है। तो ऐसे ही भगवान जो है वो इस भौतिक प्रकृति के, भौतिक जो ब्रह्मांड है, एक ही ब्रह्मांड नहीं जिसमें हम रहते हैं, सारे ब्रह्मांडों के भगवान कंट्रोलर हैं, उनके नियंत्रक हैं। इसलिए केवल भौतिक संसार, अभी बता रहे हैं आध्यात्मिक संसार। अपरे यमित स्तन्याम प्रकृति विधि में पराम जीव भूताम महाबाहो येदम धारयते जगत। दूसरी तरफ बता रहे हैं आध्यात्मिक संसार के बारे में बता रहे हैं भगवान यहां पे। इस आध्यात्मिक संसार में जो चार समस्याएं हैं ना हम लोगों के, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये वहां पे नहीं है। ये संसार असत है। जैसे सुबह सुबह हम लोग देखते हैं फूल खिल जाता है, शाम को वही फूल मुरझा जाता है। बच्चे जब छोटे छोटे होते तो बहुत सुंदर लगते हैं, बड़े हो जाते बड़े खूंखार बन जाते हैं। तो ये संसार ऐसा है, लेकिन जो दूसरा संसार है वो भगवान का जो धाम है वो ऐसा नहीं है। इस संसार में तीन गुण हैं, प्रकृति के तीन गुण हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। आप लोगों ने देखा होगा दुर्गा माता के पास एक त्रिशूल रहता है, त्रिशूल में तीन शूल रहते हैं। वो तीन शूल क्या है? वो तीन क्लेश हैं वास्तव में। तो तीन गुण होते हैं, आप सबको पता होगा सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। जैसे मान लीजिए कोई दारू पीना चाहता है, तंबाकू खाना चाहता है, अवैध संग करना चाहता है तो तमोगुण के अंतर्गत आता है। कोई कंपटीशन करना चाहता है, मैं अपने आप को प्रूव करना चाहता हूँ, मैं किसी को मार देना चाहता हूँ, ये सब रजोगुण के अंतर्गत आता है। कोई मैं कुछ शास्त्र पढ़ना चाहता हूँ, किताब लिखना चाहता हूँ, मंदिर जाना चाहता हूँ, लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, दूसरों को दुख नहीं देना चाहता हूँ, ये सब सत्वगुण के अंतर्गत आता है। तो ये जो तीन है ये उन लोगों के लिए है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, जो कृष्ण से बहिर्मुख है। बहिर्मुख का अर्थ होता है कृष्ण से दूर है। तो जो कृष्ण से दूर है ये गुण के द्वारा वो कंट्रोल में रहते हैं, ये गुण उनको कंट्रोल करते हैं। तो जीव जो है वो भगवान का दास है। अभी वो इस संसार में, इस भौतिक संसार में आ गया है, तो अभी भगवान आध्यात्मिक संसार के बारे में बता रहे हैं। भगवान कहते हैं कि ये भी है संसार, एक दूसरा संसार भी है, तुम वहां पे आ जाओ, वो भी मेरा ही है। कोई भी बोल सकता है कि मेरा है, नहीं। अभी 11वें अध्याय में भगवान प्रूव करेंगे कि मेरा कैसे है, जब बताएंगे आसित देवल व्यास इत्यादि लोगों ने भी बोला हुआ है। तो जो शास्त्र हैं, जो ऋषि मुनि हैं और कृष्ण लीला के द्वारा हम जान सकते हैं कि भगवान कृष्ण दोनों दुनिया के स्वामी हैं। अब देखिए यहां पे ये ये पांच तत्व, सबसे पहले भूमि, जल, अग्नि, वायु और खम। भूमि मतलब पृथ्वी, जल, अग्नि मतलब आग, वायु मतलब वायु और खम मतलब आकाश। उसके बाद ये पांच तत्वों से मिलकर हमारा भौतिक शरीर बनता है, जिसको हम स्थूल शरीर बोलते हैं। फिर एक अंदर उसके एक और शरीर होता है, उसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर, जो कि मन, बुद्धि और अहंकार से मिलकर बना होता है। और उसके अंदर है आत्मा, यानी आत्मा की दो कवरिंग है, पहली कवरिंग सूक्ष्म शरीर के द्वारा और दूसरी कवरिंग स्थूल शरीर के द्वारा। तो भगवान कहते हैं कि मैं सृष्टि करता हूं, मैं इसको डिस्ट्रॉय भी करता हूं, इसको खत्म भी मैं ही करता हूं। जैसे कि हमारा शरीर जो है वो खत्म होता है, जन्म लेता है और खत्म हो जाता है। तो भगवान कहते हैं मैं केवल सृष्टि करता हूं और प्रलय करता हूं ऐसा नहीं है, और भी कुछ करता हूं। क्या करता हूं? पालन भी करता हूं। प्रभव प्रलय तथा, प्रभव मतलब सृष्टि और प्रलय तथा प्रलय करना, लेकिन साथ साथ में मैं पालन करता भी हूं। वो सातवें श्लोक में भगवान बोलते हैं मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजया मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणि गणा इव। मत्तः परतरम नान्यत्, मुझसे परे कुछ भी नहीं है, मेरे बिना कुछ भी रह नहीं सकता। कैसे? जैसे कि एक जो मोतियों का एक हार होता है, वो मोतियों के हार में कई सारे मोती एक साथ रहते हैं, लेकिन उसका बेस क्या होता है? एक धागा जो दिख नहीं रहा है। कोई कहेगा अरे मोती तो अलग अलग हैं, एक साथ कैसे आ गए? क्योंकि वो धागा जो है वो कृष्ण है। वो कृष्ण की शक्ति से ऐसा संभव हुआ है कि वो सारे मोती जो है वो साथ में आए हुए हैं। भगवान कहते हैं अगर मैं उस शक्ति को निकाल लूंगा तो क्या होगा? सब उथल पुथल मच जाएगी, ये ब्रह्मांड वो ब्रह्मांड, ये लोक वो लोक में, सूरज चंद्रमा में भिड़ जाएगा, चंद्रमा पृथ्वी में भिड़ जाएगा, सब मर जाएंगे। मैं उन सबको कंट्रोल करके रखा हुआ हूं, मुझसे श्रेष्ठ कोई भी सत्य नहीं है, सब कुछ मुझ पर आश्रित है। तो थोड़ा सा हम लोग सृष्टि के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। श्रीमद् भागवतम में सृष्टि के बारे में बताया गया, थोड़ा सा हम जाएंगे, लंबा नहीं, जहां जहां बताना होगा मैं उतने ही बताऊंगा आप लोगों को। दो सृष्टि होती है, एक सर्ग एक विसर्ग। सर्ग मतलब भगवान विष्णु के द्वारा सृष्टि और विसर्ग मतलब ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि। पहले भगवान सामान ला के देते हैं, फिर ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। तो सर्ग, भगवान एकासेद मग्र आत्मात्मनाम विभु, सभी जीवों के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सृष्टि के सृजन के पहले भी व्याप्त थे। यानी भगवान जो है वो सृष्टि से पहले भी थे, सृष्टि हुई उसके बाद भगवान आया ऐसा नहीं। उन्होंने क्या किया? स्वयं को स्वांश और विभिन्नांश में विस्तारित किया। स्वांश मतलब भगवान कृष्ण के जैसे अवतार हुए, विष्णु हैं, राम हैं, नरसिंह भगवान हैं, ये सब स्वांश कहलाते हैं, स्वामी हैं। और विभिन्नांश यानी कि हम लोग जीव। तो इस तरीके से भगवान ने अपने आप को दो भागों में विस्तारित किया। अहम सर्वस्य प्रभु मत्तः सर्वम प्रवर्तते, अनगिनत जगतों का निर्माण करने के लिए कृष्ण ने अपने आप को महाविष्णु के रूप में विस्तारित किया। 10.8 में भगवान बोलते हैं अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। अभी ये समझिए भगवान ने क्या किया, इस कृष्ण ने अपने आप को विष्णु के रूप में विस्तारित किया, यानी अवतार लिया विष्णु का। उन विष्णु का नाम है महाविष्णु, तीन विष्णु हैं। अब ये महाविष्णु जो देखिए बीच में लेटे हुए और इनके शरीर से अनगिनत ब्रह्मांड निकल रहे हैं। एक ब्रह्मांड में हम लोग रह रहे हैं, उस ब्रह्मांड में पृथ्वी है, पृथ्वी में एक भारत देश है, भारत देश में एक गुजरात है, गुजरात में एक डिस्ट्रिक्ट है वलसाड, वलसाड में वापी, वापी में कोपरली, और वहां पे मंदिर है, उधर मैं बैठा हुआ हूं, आप लोग भी कहीं ना कहीं बैठे होंगे। और भगवान की स्थिति क्या है, ये सारे ब्रह्मांड उनके शरीर से निकल रहे हैं। कुछ ब्रह्मांड हमसे बड़े बड़े हैं, हमारे ब्रह्मांड से भी बहुत बड़े बड़े हैं। तो बोलते हैं हमारा जो जगत है वो जैसे बोरे में सरसों के बीज भरे होते हैं ना, सरसों के बीज के समान हम लोग हैं, हमारी गिनती नहीं है कुछ। अब जो महाविष्णु हैं, यानी कि जो विष्णु हैं, पहले विष्णु, वो क्या करते हैं, वो अपनी दृष्टि, दृष्टि जो है वो शिव जी हैं, और वो दृष्टि के द्वारा वो सभी जीवों को दुर्गा जी के गर्भ में स्थानांतरित करते हैं, यानी माया देवी के पास भेज देते हैं। तो आध्यात्मिक जगत में हमारे माता पिता हैं राधा और कृष्ण, और भौतिक जगत में हमारे माता पिता हैं शिव जी और दुर्गा जी, भौतिक जगत में हमारे माता पिता हैं। ओके, अभी सोचिए भगवान ये सब कर रहे हैं, हम लोग तो इसमें रह रहे हैं केवल, सोचिए करने में कितना मुश्किल पड़ा होगा। एक एक भजन है, दुनिया बनाना बना के चलाना हमारे बस का काम नहीं, जल पे तल तल पे आकाश। अभी हमारी जो पृथ्वी हम लोग जहां पर रह रहे हैं उसके नीचे जल है, जल पे तल है और तल के ऊपर आकाश है, भगवान ने बनाया हुआ है। भगवान ने सबको एक साथ ऐसा जोड़ के बना दिया एक कि सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ये सब कर रहे हैं। तो भगवान सृष्टि के पहले भी थे और सृष्टि के बाद भी विद्यमान हैं, अहम सर्वस्य प्रभो। अभी साइंटिस्ट लोग जो है वो सब नहीं समझ सकते, उनको अगर बताएं कि इस तरीके से सृष्टि हो रही उनको समझ में नहीं आएगा। तो अगर आपको भगवत धाम के बारे में जानना है तो शास्त्र के द्वारा आप जान सकते हैं। कोई कह सकता है कि ये सही है कि गलत है, हाँ? तो जो देखिए भगवत गीता में ही बताया रहे हैं भगवान, और भगवत गीता की अन्य बातें जब सच हैं तो ये बात भी हमें सच माननी चाहिए। तो इस तरीके से भगवान अपने आप को महाविष्णु के रूप में विस्तारित करते हैं, उसके बाद शिव जी और दुर्गा जी का यहां पे आता है वर्णन। अभी ये जो दुर्गा जी के पास त्रिशूल है, दुर्गा जी इस त्रिशूल के साथ हम लोगों को तीन तरीके के ताप देती हैं। किसको देती हैं, जो पाप कर्मों में लगा हुआ है उनको तीन तरीके के ताप देती हैं। जैसे कभी कभी बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता है तो मां क्या करती है, या जगना नहीं चाहता तो मां उसको चुटकी काट लेती है, तो चुटकी काटना मतलब उसको कष्ट होता है। ठीक वैसे ही दुर्गा जी, चूंकि तुम भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हो इसलिए वो क्लेश प्रदान करती है। अभी आध्यात्मिक जगत में जरूरत नहीं है दुर्गा जी की, वहां राधा रानी है, सीता मैया है, लक्ष्मी जी हैं, वो सब लोग क्या उनके हाथ में क्या रहता है, आपने देखा राधा रानी के हाथ में क्या रहता है, दुर्गा जी के हाथ में इतने सारे अस्त्र शस्त्र हैं, राधा रानी के हाथ में क्या रहता है बताइए, अरे ठीक है मैं ही बता देता हूं, तो उनके हाथ में रहता है फूल, फूल के गुलदस्ता रहता है ना? तो राधा रानी क्या कर रही है, वो इंतजार कर रही है कि ये हमारे पास है, मैं इसको फूल दूं, गुलदस्ता दूं, हम इनका इनका वेलकम करूं, अपने बच्चों का स्वागत करूं, और यहां पे हमको क्या मिल रहा है, त्रिशूल। जैसे मान लीजिए आप किसी मीटिंग में जाएं, हाँ, मीटिंग में आपको त्रिशूल मिले या गुलदस्ता मिले कौन क्या अच्छा रहेगा आपके लिए, स्वागत किया जाए या भगा दिया जाए, हाँ? तो ऐसे ही ये भगवान की दो शक्तियां हैं, अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति दुर्गा जी और अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी। तो इस तरीके से ये ब्रह्मांड जो है वो आता है, यहां पे एक बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण शक्तिमान है, राधा उनकी अंतरंगा शक्ति हैं, दुर्गा देवी उनकी बहिरंगा शक्ति हैं। सजन के समय सारे अंड रूपी जगत एक दूसरे के साथ इकट्ठे होते हैं, पांच तत्वों से उनका थोड़ा डिटेल है, स्किप करेंगे। जड़ पदार्थ में काल प्रवेश करता है, एग्जाम्पल दिया जाता है कि जिस प्रकार पुरुष से गर्भ धारण किए बिना कोई स्त्री संतान उत्पन्न नहीं कर सकती, उसी प्रकार या प्रकृति काल रूप भगवान से गर्भदान किए बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं कर सकता। तो जो जड़ पदार्थ रहता है भगवान काल के रूप में उसमें प्रवेश करते हैं, उसके बाद यह चलायमान प्रतीत हो जाता है, फिर भगवान उसके अंदर प्रवेश किए विराट रूप में, और विराट रूप की उत्पत्ति इस प्रकार से होती है। यह बहुत डिटेल है, हम इसको स्किप करेंगे। भगवान प्रत्येक जगत अंड में विराट रूप में प्रवेश करते हैं। हाँ, अभी मैंने बताया था सबसे पहले जो महाविष्णु थे उनके शरीर से बहुत सारे ब्रह्मांड निकले, अभी वही महाविष्णु दूसरा विष्णु का रूप धारण करते हैं और हर ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। जो उनके शरीर से ब्रह्मांड निकल रहे थे ना उसके अंदर वो प्रवेश करते हैं और वहां पे वो क्या करते हैं, गर्भोदकशायी रूप में अनंत शेष के ऊपर शयन करते हैं। कृष्ण से महाविष्णु, महाविष्णु से ही गर्भोदकशायी विष्णु जो सारे ब्रह्मांडों के भीतर उपस्थित हैं, और तीसरे क्षीरोदकशायी विष्णु जो परमात्मा रूप में कण कण में विद्यमान है। विष्णु स्तुत्रेण रूपाणि पुरुषाख्यानथो विदु एकम तु महता श्रेष्ठा द्वितीयम त्वंड संस्थितम तृतीयम सर्वभूतस्थम तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। विष्णु तीन रूप में विद्यमान है, एक तो महता श्रेष्ठा यानी महाविष्णु, द्वितीयम त्वंड संस्थितम, त्वंड संस्थितम मतलब गर्भोदकशायी विष्णु, तृतीयम सर्वभूतस्थम सर्वभूत में रहने वाले, तानि ज्ञात्वा विमुच्यते जो इनके बारे में जान लेता है वो मुक्ति प्राप्त कर लेता है। तो इस तरीके से ये जो गर्भोदकशायी विष्णु है इनके नाभि से कमल निकलता है और उस कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। आपको दिख रहे होंगे ब्रह्मा जी कमल के ऊपर, ये ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, विष्णु के अवतार के साथ विभाजित हो जाते हैं और वे भगवान के साथ ब्रह्मा के जन्म होने तक सहन करते हैं सारे जीव। आध्यात्मिक जगत में सृष्टि और प्रलय नहीं होता, केवल भौतिक जगत में ही सृष्टि और प्रलय होता है। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, मेरी इच्छा से बारंबार यह प्रकट होता है, मेरी इच्छा से विनष्ट होता है। प्रतिम स्वामष्टभ्य विसर्जामि पुनः पुनः भूतगामी मम कृष्णम अवशम प्रकृतेर वसात। भगवत गीता 9.8 में भगवान बोलते हैं मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूं, मेरी शक्ति से सारे लोक अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। गामा विश्व च भूतानि धारयाम्यहं मोजसा। भगवत गीता 15.13 यद्यद् विभूति मत सत्वम श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तद्देवावगच्छत्वम मम तेजोंस संभवा। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य सारा सौंदर्य सृष्टियां सब मेरे तेज के एक छोटे से कण से उद्भूत हो रही हैं, मैं उसके पीछे हूं। 10.41 में तो कृष्ण जो है सभी विष्णुओं के स्रोत हैं, तो रिपीट हो रहा है। हाँ, अभी देखिए ये जो ब्रह्मा जी प्रकट हुए भगवान के नाभि से जो कमल निकला उसमें उस नाभि से जो कमल की जो नली है उस नली में 14 लोगों का निर्माण करते हैं। कौन? ब्रह्मा जी। अभी ब्रह्मा जी प्रकट हो गए तो ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। 84 लाख योनियों को इन 14 भुवनों में 14 लोकों में वो स्थापित करते हैं। इसमें बीच में आता है भूलोक, सबसे नीचे पाताल, उसके ऊपर रसातल, तलातल, महातल, सुतल, अतल, फिर भूलोक, उसके बाद भुवालोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक और सबसे ऊपर ब्रह्मलोक। ये 14 लोक हैं। तो क्षीरोदकशायी विष्णु पहले विष्णु थे जिनके शरीर से ब्रह्मांड निकल रहे थे, दूसरे विष्णु जो उसमें प्रवेश किए, और तीसरे क्षीरोदकशायी विष्णु जो कि परमात्मा रूप में सभी जीवों के हृदय में है और वो 14 लोकों के परे श्वेत द्वीप में दुग्ध सागर है वहां वो शयन करते हैं। जब आप लोग सुने होंगे जब दुनिया में बहुत असुरों ने परेशान करना शुरू कर दिया तो सारे देवता भगवान विष्णु के पास गए। वो कौन से विष्णु के पास जाते हैं? इन विष्णु के पास जाते हैं, क्षीरोदकशायी विष्णु के पास जाते हैं। चलिए, टाइम बहुत हो रहा है। फिर इस प्रकार से भगवान पहले सृष्टि कर देते हैं, उसके बाद ब्रह्मा जी सृष्टि करना शुरू करते हैं। ये सब हम स्किप करते हैं। ओके, अभी आ रहा हमारा दूसरा पार्ट। भगवान अपने बारे में बताना शुरू करते हैं। हाँ, रसोहम अप्सु कौन्तेया प्रभास्मी शशिशूर्ययो प्रणवा सर्ववेदेषु शब्दः खेम पौरुसंनिषु पुण्यो गन्धा पृथिव्यां चातेयश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चामि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं बलं बलवता चाहं कामराग विवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। मैं जल का स्वाद हूं, भगवान कहते हैं, और क्या है, मैं अग्नि का ताप हूं, मैं चंद्रमा की शीतलता हूं, क्या हो गया, प्रणव सर्ववेदेषु, मैं ओमकार हूं, जो ओम शब्द है वो कौन है, वो भगवान ही है। मैं शब्द हूं, ये जो भी शब्द हमको सुनाई देते हैं ये शब्द भी कौन है, तो स्वयं भगवान। पौरुषम ऋषु, पुरुषों के अंदर जो भी पौरुषत्व होता है वो भी मैं ही हूं। पुण्यो गंधा पृथिव्याम, पृथ्वी में जो गंध होती है जिसके कारण हम लोग देखते हैं पृथ्वी से जितने भी प्लांट्स जितने भी पौधे निकलते हैं और पेड़ निकलते हैं उनमें अलग अलग तरीके की स्मेल पाई जाती है, वो भगवान कहते हैं वो मैं हूं। तेजस चास्मि विभावसो, तेज मैं हूं अग्नि का। जो भी आप देख रहे हैं 84 लाख योनियां हैं, ये सब भगवान से उद्धृत हैं। तपश्चास्मि तपस्विषु, तपस्वियों का मैं तपस्या हूं। बीजं मां सर्वभूतानि भूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्, मैं समस्त जीवों का आदि बीज हूं। तो हम लोग जो विभूतियां देखते हैं, जैसे मोर बहुत सुंदर नृत्य करता है, कोयल बहुत सुंदर गाती है, भगवान कहते हैं सब मेरे से आता है। मतलब भगवान मोर से सुंदर नृत्य करते हैं, भगवान कोयल से सुंदर गा सकते हैं। तो इस तरीके से जीव जो है वो अलग अलग योनियों में इस तरीके से वो विचरण करता रहता है और एक ही तरीके से वो बाहर जा सकता है, वो जब भगवान की भक्ति करता है। कभी स्वर्ग जाता है कभी नर्क जाता है, लेकिन भगवान की भक्ति करके वो वैकुंठ को प्राप्त कर सकता है। बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि, अभी देखिए न्यूटन बैठे हुए हैं राइट साइड में, इनके सिर पर एप्पल गिरा, तो इनके दिमाग में तुरंत आया ये एप्पल नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। ऐसे लेफ्ट साइड में एडिसन है जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया है, इन्होंने भी बल्ब, तो ये बुद्धि कौन दे रहा है इनको, भगवान से आ रही है बुद्धि। आइंस्टीन इतने बड़े वैज्ञानिक हुए, बुद्धि कहां से आ रही है, भगवान से। तेजस तेजस्वी नाम हम, जो तेजस्वी लोग हैं उनके अंदर तेज भी किसके कारण है, मेरे अंदर, मेरे कारण है। बलम बलवता चाहम काम राग विवर्जितम, बलशाली लोगों का जो बल है उसके भी पीछे मैं ही हूं। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ, भगवान कहते हैं कि जो धर्म का धार्मिक है ऐसा जो काम है वो भी मैं ही हूं। इसका अर्थ ये है कि काम को नकारा नहीं गया है। बोलते हैं कि अगर कोई धार्मिक रूप से विवाह करता है उसके बाद जो बच्चे पैदा होते हैं वो बच्चे पैदा करने की जो प्रक्रिया है भगवान कहते हैं वो मैं हूं, बसरते वो धार्मिक हो, धर्म विरुद्धो, तो वो भगवान बोलते हैं मैं हूं। तो इस तरीके से 14 उदाहरण भगवान जो है यहां पे पिछले श्लोकों में देते हैं। अभी भगवान कहते हैं ये चैव सात्विका भावा राजा सास्तामसाश्च ये मत्ते वेति तान विद्धि ना त्वम त्वहम तेसु ते मई। ये जो 14 उदाहरण उन्होंने दिए हैं ये भगवान कृष्ण की भौतिक शक्ति हैं, लेकिन भगवान इनसे परे हैं। इसलिए अब भगवान यहां पे बताएंगे 13 से 19 के बीच में कि कौन मेरी शरण ग्रहण करने से किसको क्या फायदा होगा, मेरी शरण ग्रहण करना है कि नहीं ग्रहण करना है। तो बोलते हैं त्रिभिर गुण मैर भाव है रेभी सर्वमिदम जगत मोहितम ना भी जानाती मामेभ्य परम भयम। जीवात्मा जो है वो तीनों गुणों से भ्रमित हो जाता है, इसलिए मुझे समझ नहीं पाता है। लेकिन अगर कोई मेरी शरण ग्रहण करता है तो माया उसको छोड़ देती है। देवी है ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया मामे वे प्रपद्यंते माया में ताम तरंतिते। ये जो तीन गुण है ये उसको परेशान नहीं करते हैं। जैसे भगवान कहते कि ये जो तीन गुण है मेरे से ही निकले हैं लेकिन ये मुझे नहीं फंसा पाते। जैसे मकड़ी देखिए आप लोगों ने, मकड़ी जाला बुनती है लेकिन वो जाले में खुद नहीं फंसती, बाकी सारे कीट पतंगे उसमें फंस जाते हैं। ऐसी भगवान की तुलना मकड़ी से की जाती है, वो उन्होंने ही ये सारी चीजें बनाई लेकिन भगवान उसमें फंसते नहीं है। तो अभी इसके आगे भगवान बताते हैं कि अगर कोई मेरी शरण लेता है तो उसका क्या होता है, क्योंकि मेरी शरण लेना वो भाव सागर को पार करने का एकमात्र उपाय है। तो सब लोग भगवान की शरण क्यों नहीं ग्रहण करते, ये प्रश्न आता है। जब भगवान को भगवान की शरण ग्रहण करने से ही भाव सागर से पार पाया जा सकता है तो सब लोग भगवान की शरण क्यों नहीं ग्रहण कर लेते। भगवान कहते हैं नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपहृत ज्ञाना आश्रिम भाव माशिता। चार तरीके के लोग जो है वो मेरी शरण में नहीं आते हैं। कौन है चार तरीके के लोग? सबसे पहले मूढ़ा, मूर्ख लोग। मुंबई में आप लोकल ट्रेन देखिए सुबह सुबह 7-8 बजे, 2 घंटे विरार से लेकर चर्च गेट जाते हैं खड़े होके, चर्च गेट से विरार शाम को खड़े होके वापस आते हैं और खा इतना ही पैसा पाते हैं कि मुंबई में रह सकें खा सकें बस। लेकिन उनसे बोलो कि थोड़ा भगवान का नाम ले लो, भगवान के नाम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं इन लोगों को गधा। गधा जो है वो अपने पीठ के ऊपर बासमती राइस लेके जाता है लेकिन खाने को उसको एक दाना भी नहीं मिलता उसका। वो खाने को क्या पता है? घास, जो हर जगह मिल जाएगी, उसके लिए उसको गधा मजूरी करने की जरूरत नहीं है। मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, नरों में जो अधम लोग हैं, नरों में अधम लोग मतलब दिखने में बहुत बूट सूट वाले हैं, बहुत टिप टॉप रहते हैं लेकिन खाते क्या है? गाय का मांस खाते हैं, मांस खाते हैं। शास्त्रों को कोई पालन नहीं करते, कोई संस्कारी क्रियाकर्म नहीं करते, भगवान में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ना तो उनका गर्भदान संस्कार हुआ है, ना उनको कोई संस्कार मिले जन्म लेने के बाद, पूरी लाइफ जो है वेस्ट हो गई। टीवी देखने में, न्यूज़पेपर देखने में, भगवान के बारे में कोई जिज्ञासा नहीं, अपने बारे में कोई जिज्ञासा नहीं, ऐसे लोग नराधम। तीसरे माया अपृत ज्ञान, ऐसे लोग जिनका ज्ञान जो है माया ने हर लिया है। पढ़े लिखे गंवार लोग, ये लोग पढ़े लिखे हैं साइंटिस्ट हैं लेकिन भगवान पे डाउट करते हैं, भगवान के वो नहीं मानते। माया पृथक ज्ञान आसुरम भाव माशिता। तो और चौथे तरीके के आसुरी लोग होते हैं जो भगवान के अगेंस्ट में कार्य करते हैं, दूसरों को सताने वाले होते हैं। ये चार तरीके के लोग भगवान की शरण में नहीं आते। फिर चार प्रकार के पुण्यात्मा बताए गए जो भगवान की शरण में आते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी चा भर्तर्षभा। चार तरीके के लोग, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी। आर्तो, आर्त मतलब जो बहुत दुखी है संसार से, बहुत पीड़ित है, परेशान है, बीमार है, सब चीजें आर्त। दूसरे अर्थार्थी, जो धन चाहने वाले हैं, आगे दिया होगा। दूसरा धन चाहने वाले, तीसरा जिज्ञासु। जो धन चाहने वाले कौन थे? ध्रुव महाराज। कभी कभी लोग बालाजी मंदिर जाते हैं, बोलते हैं मैं 5 लाख का फायदा करा दो, 5,000 आपको दूंगा। धन चाहने वाले, भगवान के पास जाने वाले। तीसरे होते जिज्ञासु, ये दुनिया के कैसे आई, किसने बनाया, कब बनाया, कौन बनाया, हाँ भगवान को चलो ढूंढते हैं, ये जिज्ञासु लोग। और चौथे तरीके के लोग होते हैं ज्ञानी, जो जैसे चतुष्कुमार हैं, वो भगवान के बारे में जानते हैं। हालांकि भगवान आगे के श्लोक में कहते हैं तेसाम ज्ञानी नित्युक्ता एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानी अत्यर्थम अहम सच मम प्रिया। मुझे ज्ञानी पसंद है लेकिन जो बाकी तीन भी है ना, भगवान उनको भी प्रेम करते हैं। जो आर्थ हैं, जिज्ञासु हैं, अर्थार्थी, भगवान उनको भी प्रेम करते हैं। वो लोग बेटर हैं नास्तिकों से, क्योंकि वो आ किसकी शरण में रहे? भगवान के शरण में आ रहे हैं। ये चीज ध्यान देने वाली है। तो भगवान कहते हैं उदारा सर्व एवते ज्ञानी त्वात्मयो मे मतम आस्था साहि उक्तात्मा मावे वान उत्तमम गतिम। कि जो ज्ञानी ये सब उदार हैं लेकिन ज्ञानी मुझे ज्यादा प्रिय है। और वो ज्ञानी के लिए क्या बताते हैं 7.19, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा। ज्ञान इकट्ठा करते 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 बहुत जन्म निकल जाते हैं, ज्ञानवान माम प्रपद्यते, तब उसको पता चलता है, क्या पता चलता है, वासुदेवा सर्वमिति, हमें तो वसुदेव की शरण लेनी चाहिए, जो वासुदेव हैं, वसुदेव के पुत्र हैं, उनकी शरण लेनी चाहिए। ऐसा महात्मा सुदुर्लभ होता है, बहुत मुश्किल से मिलता है। तो इस प्रकार यदि सकाम भक्त कृष्ण की उपासना करके सफल हो जाते हैं तो क्या होता है, जब वो संताप मिटाने या फिर इच्छा पूर्ति के लिए देवी देवताओं की उपासना करते हैं। अभी ये लोग तो भगवान की शरण में आए तो इनका तो हो गया, लेकिन जो देवी देवताओं की शरण में चले जाते हैं उनका क्या होता है, भगवान अगले श्लोकों में उनके बारे में बताना शुरू करते हैं। कामस्तस्त हृतक ज्ञान, वो क्या है, काम के प्रति वो कामनाएं उनके अंदर इतनी रहती हैं कि वो देवी देवताओं के पास चले जाते हैं। जैसे बच्चा होता है उसको लाल पीली नीली वो मिठाई या फिर ऐसे टॉफी चॉकलेट्स आती हैं, उनको बहुत प्रिय होती हैं, खुले में मिल रही होती हैं, तो वो लेने का प्रयास करता है। लेकिन भगवान क्या, माता पिता क्या करते हैं, माता पिता उसको अच्छी जगह से दिलाते हैं कोई भी खाने की चीज। तो ठीक वैसे ही भगवान जो है वो देवताओं की तरह नहीं है, देवता क्या करते हैं, वो पीछा छुड़ा लेते हैं, सामान देके पीछा छुड़ा लेते हैं, जो मांगता है उसको दे देते हैं और अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। कामस्तहस्ता हृतक ज्ञान, उनका ज्ञान जो है वो खत्म हो गया होता है। तो जैसे रावण था, भौमासुर था, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जहां पे असुरों ने जो है देवी देवताओं के शरण ली है। भगवान ऐसी इच्छाओं को पूरा नहीं करते तब तक जब तक वो व्यक्ति शुद्ध नहीं हो जाता। जैसे ध्रुव महाराज, ध्रुव महाराज राज्य प्राप्त करना चाहते थे तो भगवान ने क्या किया, उनकी उनको पहले शुद्ध किया, फिर उन्होंने कहा नहीं मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए, तो भगवान ने कहा नहीं अभी तुम राज्य लो, फिर राज्य भी उनको दिया। तो जो भगवान को सही से नहीं जानते हैं, जो ये नहीं जानते कि देवता, देवताओं द्वारा दिया हुआ वरदान, देवताओं का रहने वाला लोक और सारा ब्रह्मांड, ये सब खत्म हो जाएगा, वो ही देवता के शरण में जाते हैं। तो भगवान कहते हैं मैं उनको श्रद्धा और फल देता हूं, मैं ही देता हूं इनडायरेक्ट रूप से। और क्या बोलते हैं, अंतवत्तु फलम तेषाम भवति अल्पमेधसाम देवान देव यजा यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि, जो मेरे भक्त हैं वो मेरे पास आते हैं और देव देवता के जो देवताओं के उपासक हैं उनके पास जाते हैं। देवताओं के उपासक के फल जो हैं अंतवंतु फलम होते हैं, खत्म होने वाले होते हैं। अल्प में जिसम उनके शरण में जाते हैं, जो कम बुद्धि वाले होते हैं वो उनके शरण में जाते हैं। अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम मन्यते माम बुद्धया परम भाव जनंतो मम व्यमन उत्तमम, जो अज्ञानी निर्विशेषवादी हैं वो अल्प ज्ञानी उपासकों से भी ज्यादा भ्रमित होते हैं। जो निर्विशेषवादी हैं, अव्यक्त की जो उपासना करते हैं यानी कि निराकार की उपासना करते हैं, वो और ज्यादा फंसे हुए हैं। अब भगवान कहते हैं कि लोग कृष्ण को देख क्यों नहीं पाते, हम लोग भगवान को क्यों नहीं देख पाते हैं। भगवान कहते हैं ना हम प्रकाशा सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ोयम ना भी जानाती लोको मामज मव्ययम, मैं मूर्खों और अल्पज्ञों के लिए कभी प्रकट नहीं होता हूं। कोई कहे कि अगर कृष्ण भगवान है तो मेरे सामने प्रकट हो जाए, अरे क्यों प्रकट हो जाए भाई, तुम्हारे नौकर हैं क्या, नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं मैं उनके लिए कभी प्रकट नहीं होता हूं, उनके लिए मैं अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूं, वो जान भी नहीं पाते कि मैं अजन्मा हूं और अविनाशी हूं। अगर भगवान माया से आच्छादित नहीं है, हमारी दृष्टि माया से ढकी हुई है, कृष्ण का ज्ञान माया से कभी आच्छादित नहीं होता, वे समस्त भूत वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हैं। इसलिए भगवान कहते हैं वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुना भविष्याणि च भूतानि माम तु वेदना कश्चना, वेदों में जो कुछ भी बताया गया है, वर्तमान का नॉलेज, भविष्य का नॉलेज, सब कुछ मैं जानता हूं। माम तु वेदना कश्चना, मैं सब कुछ जानता हूं। कृष्ण को कोई क्यों नहीं जान पाता, क्योंकि जीव ब्रह्म में रहता है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतपा, ये जो काम क्रोध और लोभ हैं इसमें व्यक्ति फंसा रहता है, साथ साथ में इच्छा और द्वेष के कारण वो द्वंद करता है भगवान से, द्वंद में फंसा रहता है, मोहित रहता है। तो पूछते हैं कोई ऐसा व्यक्ति है जो द्वंद्वों से मुक्त होता है और कृष्ण की भक्ति करने की योग्यता रखता है, भगवान कहते हैं यस ये साम द्वंद गतम पापम, जिनके पाप सारे खत्म हो गए हैं, जनानाम पुण्य कर्मणाम, और जिनके पुण्य कर्मों का उदय हो गया है, ते द्वंद मोह निर्मुक्ता, वो लोग द्वंद और मोह से मुक्त होकर भजनते माम दृढ़व्रता, वो मेरे मुझे दृढ़ता से भक्ति करते हैं। तो जो भक्ति करने लगता है, समझ लीजिए दृढ़ता से, उसका समझ लेना चाहिए कि उसके पाप जो है खत्म हो चुके हैं, उसके पुण्य कर्म जो है वो प्रकट होने लगे हैं। तो इस प्रकार से अभी भगवान इन मोक्षकामी भक्तों के बारे में बताते हैं कि जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित यतन्तिये ते ब्रह्म तद विदुः कृष्णम अध्यात्म कर्म चाखिलम। और फिर 30 नंबर श्लोक में वो अधिभूत अधिदेव और अधियज्ञ के बारे में बताते हैं। कहते हैं कि अधिभूत अधिदेव और अधियज्ञ के रूप में जो जानते हैं मुझे, मेरी पूर्ण चेतना में रहते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से थोड़ा मैंने फास्ट किया लास्ट में, अध्याय 7 में 6 प्रकार के भक्तों के बारे में बताया गया है। 4 प्रकार के हमने सुने थे, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, और बाद में मोक्षकामी और केवल भक्त, उनके बारे में बताया गया है। तो हम लोगों ने सुना 4 भागों में इसको हमने डिवाइड किया 7th चैप्टर को। सबसे पहले श्रवण, भगवान के श्रवण की महिमा, भगवान के बारे में सुनना। फिर हमने जाना कि भगवान सर्वव्यापी है, सब कुछ भगवान के कंट्रोल में चलता है। और फिर हमने देखा कि भगवान को स्वीकार अस्वीकार कैसे लोग करते हैं। और फिर भगवान का देवताओं का जो डिफरेंस है वो हमने यहाँ पे चर्चा की। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप लोगों को।